श्री गुरुदेव नमः। दास दोनों हाथ जोड़ के संगत दे चरणा च मथा टेकते हुए अपने गुनाह की माफी लई अरदास बेनती करता है। ओ गुनाह जो करोड़ों जन्मां तो मैं कट्ठे करी बैठा हाँ, संगत की समर्था है बख्शन की, बख्शन की कृपालता करो। संगत दे बख्शे नूं गुरु साहब भी बख्श देते हैं।
वेस
करै कुरूप कुलखणी, मन खोटै कुड़ियार। वेस करदा शिंगार कौन कर रहा है? कुरूप जिस दे अंदर कोई गुण नहीं, गुरु साहब उपदेश करते ने वह कुलक्षणी है। कुल नू नास करन वाले लक्षणा नू धारण करती है। कौन? जड़ी कुरूपता हो करके वेस शिंगार करती है। कारण की है? मन खोटा है कुड़ियार। क्यों? क्योंकि मन खोटा है। खोट का की भाव है? जड़ी चीज ना चले असि कहने खोटा है सिक्का। क्यों? क्योंकि चलता नहीं, इस करके खोटा है। रूहानियत दे विच मन खोटे कूड़ियार, कूड़े नू कठा करना, कूड़े का भाव है झूठ, झूठ नू कठा कर रहा है, इस करके यह खोटा है। रूहानियत दे इस भाव नू गुरु साहब आज दे इस मजमून दे विच जिसनू गुरु साहबां ने दुहागन कह करके पुकारिया है, इस जगत दे विच दुहागन किसनू कहा जाता है? इस शब्द दे विच दोनों ही गल्लां बिल्कुल बराबर चलदियां हन। एक पासे दुहागन दे करैक्टर नू गुण नू उजागर किया जाता है और दूसरे पासे इस दी तुलना की जाती है रूहानियत दे उस मजमून दे नाल जिसनू जान करके ये जीवात्मा अपने इस अधूरेपन नू जिसनू गुरु साहब दुहागन कह रहे ने त्याग दीए और इसनू त्याग करके वो सदा ले सुहागन बनती है। पिछे गुरु साहबां ने इस सुहागन नू स्पष्ट किया सी केड़ियां जीवात्मा ने जड़ियां इस जन्म दे विच मनुख लोक दे विच आ करके सुहागन बन पांदियां ने और इस आज दे मजमून दे विच दुहागन दे राही गुरु साहब उपदेश करनगे कि कौन दुहागन है, उसका की करैक्टर है, किन्ना गुणा ने लैंग करके ताणन करके ये जीवात्मा दुहागन कहलांदी है और किन्ना नू त्याग करके यह सुहागन बन सकती है। तो इस जगत दे विच असी विचार करके देखिए कि असी जदों भी कोई भी गल करते हाँ उस दे विच सब तो पहले असी मैं का इस्तेमाल करते हाँ। मैं खांदा हाँ, मैं चलदा हाँ, मैं करदा हाँ। मैं का जो भाव है इस जगत दे विच आधारभूत भाव है। इस जगत दे विच दो शक्तियां काम कर रही हैं। जो मूल शक्ति है वह अपने आप इस अपनी मौज इस अपनी धुन दे विच मस्त है, उसनू कोई नहीं जानता। उसनू प्राप्त करन वास्ते जानन वास्ते ही यह दो शक्तियां का खेल इस जगत दे विच रचाया गया है। इस खेल दे विच मजमून जो है बड़े ध्यान नाल सवण करो कि की है और किस तरीके दे नाल असी इस खेल नू जितना है। इस खेल दे विच जित हासिल करन वाला ही सुहागण कहलांदा है, गुरमुख कहलांदा है और जड़ा हार जांदा है या इसी दूसरे गुण दे विच लिप्त रहिंदा है उसी गुण नू असी दुहागण कह करके याद करदे हां। सो इहदे विच पहला गुण जो है वह करता दा वह मैं है। हुण मैं जो है इस खेड दे विच दो खिलाड़ी खेल रहे हैं। बेशक दूसरा खिलाड़ी जो है पहले खिलाड़ी को ताकत या धन ला करके काम करता है, इहदे च कोई शक नहीं है। पर जिस वक्त बिसात बिछ गई, चौपड़ लग गई, खेल शुरू हो गया, उस वक्त नियम पक्के ने। नियमां दी उल्लंघन दोनों चो कोई भी नहीं करता, भावे दूसरा खिलाड़ी कितना भी अधूरा क्यों ना होवे, पर वह नियम दे ना खुद उल्लंघन करता है ना ही वह तन और ताकत देने वाला खुद उसकी उल्लंघना करता है और ना ही इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੋਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਹੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਰਤਾ ਦੇ ਕਰਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਧਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਗੁਣ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੰਕਾਰ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੋਹਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਮੈਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਦੇ ਮੈਂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਹੂੰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੂੰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈ ਦਾ ਭਾਵ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਔਰ ਅਟਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਛਾ ਜਾਗਰਤ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਚਾਜਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੂੰ ਕੀ ਲੋੜਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਦਾ ਭਾਵ ਪਹਿਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬਾਲਪਨ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ ਸੀ, ਬੁਢਾਪਾ ਸੀ, ਅਵਸਥਾ ਬਦਲ ਗਈ, ਕਿਰਿਆ ਬਦਲ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਬੁਢਾਪੇ ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਵਿਆਪਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਅਭਾਵ ਆ ਜਾਏ ਪਰ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਉਹ ਸਾਗਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਤੋ ਨਹੀਂ ਦਾ ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਕਦੋਂ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਧੂਰਾਪਨ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਖਿਲਾੜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇੱਛਾ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਮਨ, ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਇਹ ਅਧੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਛਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਹੈ ਤੇ ਇੱਛਾ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਗੁਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਮਾ ਘਟਾ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਅਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਔਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰੇ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਜਾਗਰਤ ਹੋਈ, ਇੱਛਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਇਸ ਗੁਣ ਦਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨ ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਯਾਦ ਕਿ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਸਤੂ ਇੱਛਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਦ ਵੀ ਮੈਂ ਰਹੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਵਸਤੂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ कि भाई मैं कारण रूप दे विच पहले तो ही इस जगत दे विच विद्वान हां और मैं कदे भी बाद विच प्रवेश नहीं करदा और अपनी जगह तो कदी हिलदा भी नहीं और प्रवेश कीते बिना अपने जगह तो हिले बिना मैं इस संसार दा कार व्यवहार चलादा वा। यानी कि कर्ता कारण दे रूप दे विच पहले तो ही मौजूद है, इच्छा बाद विच पैदा हुई। और जदों असीं इह कहिंदे आं कि मैं सुखी होना चाहुंदा वा ते सानू असल दे विच इस मैं रूपी सुख दा पता ही नहीं है, खोज ही नहीं कीती, सानू उस दे प्रति कोई ख्याल ही नहीं है। असीं इच्छा रूपी सुख दी तलाश कर रहे हां और उसी नूं इकट्ठा करके यह सोच रहे हां कि मैं सुखी हो जावांगा। सुखी क्यों है? क्योंकि दुख नहीं है। दुखी क्यों है? क्योंकि सुख नहीं है। यानी कि सुख दे अंदर दुख पहले तो ही मौजूद है। सुख दा अंत की है? दुखी होना। जिस भी संयोग वियोग दुई कार चलावे लेखे आवे पार। कर्मा अनुसार लेखे अनुसार ए संयोग और वियोग यानी कि मिलना और विछड़ जाना, मिलने नु सुख और विछड़ने नु दुख किया जांदा है। और जदों भी कोई वस्तु या संबंध सानू मिलता है संयोग कर्मा अनुसार असी अपने आप नु मैं सुखी समझण लग जांदा है। और याद रखना जदों असी सुखी होंदे हां ते साडे पुन सरण लग जांदे ने और उसका अंत की है? दुख। क्योंकि वस्तु और संबंध ने मिट जाना है। यह जगत जड़ा है, चाहे चंद सूरज तारे ने चाहे संबंध ने, जो कुछ भी वस्तु मन बुद्धि और इंद्रिया दे नाल दृष्टि गोचर है असी महसूस कर रहे हैं वह परले दे विच जा रही है और परले महापरले दे विच खत्म हो रही है। हर पल हर कड़ी विनाश हो रहा है। यानी कि जिसनू असी सुख समझ रहे हैं उसका अंत जड़ा है, दुख ही दुख है। और दुख यानी वियोग होने के बाद संयोग कदू होएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर अगर संयोग हो गया तो इसकी गुरु साहब कहते हैं कि पूरी गारंटी है कि वियोग जरूर होएगा। अगर तेरा जन्म होया तो तू अपनी मां तो जरूर बिछड़ेगा। अगर तू बच्चा मांग रहा तो एक कड़ी हो भी आएगी कि बच्चे ने तैनू छड़ के चला जाना। यानी कि यह गल पक्की है कि संयोग का अंत वियोग है और वियोग होने के बाद दोबारा तो तैनू मनुखा जन्म मिलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज के मजबून सरवण कर लो कि बिल्कुल स्पष्ट मजबून है कि असी सुख किदे विच लभ रहे हैं, कुछ सुख किसनू समझ रहे हैं। यानी कि इच्छा नू जड़ी की बात दे विच प्रकाश दे विच जो कुछ भी दृष्टि गोचर होया और उस दे विच कदी भी इस जीवात्मा नू सुख प्राप्त हो सकता ही नहीं। इनू गुरु साहब एक होर उदाहरण दे रहे ने, बड़ा स्पष्ट उदाहरण है। एक बच्चा जड़ा है अपनी मां दे कोल जा करके गुड़ मंगदा, कहंदा है मां मैनू गुड़ चाहिदा है, मिठा है, स्वाद लगदा है, मैनू गुड़ खाण नू दे। मां कहंदी है बेटा गुड़ घर दे विच नहीं है, तू इंज कर ग्वार लै जाके बनिए कोलो दे के तो गुड़ ले आ और अपना स्वाद पूरा कर ला। बच्चा दौड़िया होया जांदा अपने बनिए कोल ते जाके उसनू ग्वार देंदा। बनिया की करदा तोल के ग्वार रख लैंदा और तोल के गुड़ उसनू दे दिंदा है। गुड़ नू चटदा पिया है बच्चा, बड़े प्यार दे नाल चट्टी जा रहा है और चटदे ही चटदा अंदरों अंदर बड़ा ही प्रसन्न है कि मैं ते बनिए नू मूर्ख बना आया। किस तरीके दे नाल बना आया? ग्वार जड़ा है वह भोजन किसदा है? जानवरां दा। मैं जानवरां दा भोजन दे के इंसान दा भोजन यानी कि गुड़ ले आया वा। ये बनिया मूर्ख है, इसनू तो पता ही नहीं और बड़े स्वाद नाल उस गुड़ नू चट्टी जा रहा, अपने आप नू महान समझ रहा है। ये कोशिश कर रहा है कि मैं उच्चा सौदा कर आया वा, बनिया नू घाटा पा आया वा। और दूसरे पासे बनिए दा ख्याल किया जाए, बनिया किसनू किया जांदा? यानी कि सस्ता लेना और महंगा वेचना। यानी कि सस्ता लैके महंगा वेचण दे विच दा जिहड़ा मजबून है वह बनिए दी मंजिल है। ना उसनू गवार दे नाल मतलब है ते ना उसनू गुड़ दे नाल मतलब है। वध ते उसने देना नहीं, बेईमान बेशक हो जावे यानी कि घट तोल दे बेईमानी कर लवे वह एक अलग मजबून है, पर वध देण तो रहा पर उसका मतलब दोनों विच ही नहीं है। यानी कि कार व्यवहार पूरा कर रहा, बड़े ध्यान दे नाल तोल के लै भी रहा और दे भी रहा है, पर उसनू ना गवार दे नाल मतलब है ते ना गुड़ दे नाल मतलब है। उसकी मंजिल केड़ी है? उसका ख्याल कित्थे है? उसका ख्याल है तन नू कमाना, तन दे उपर मंजिल है। यानी कि बच्चा यह समझ रहा है कि मैं उसनू मूर्ख बना रहा, पर बनिया अपने व्यवहार दे विच पूरा साबित होया उसने तन नू हासिल कर रहा कार व्यवहार करते हुए। ठीक यही मजबून है सुहागण दा और दुहागण दा। सुहागण कौन है? बनिया सुहागण है। क्यों? क्योंकि उसने इस संसार दा कार व्यवहार करदे हुए अपनी मंजिल नु यानी के धन नु हासिल कर लिया, सारा कुछ किया उसने, यानी के गुड़ कितना ही मिठा सीगा उसने दे दिता, पर उसका लालच स्वार्थ नहीं किया, अपना व्यापार पूरा करके अपनी मंजिल नु प्राप्त कर लिया। हुण बच्चा जड़ा है स्वाद दे विच अहंकार दे विच इच्छा नु पूर्ण करन वास्ते गुड़ नु चट्टी जा रहा और कह रहा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हां। ठीक उस तरीके दे नाल साडे बहुत सारे बंदे मौजूद हैं और इस जगत दे विच जड़े गुरु दे बहुत ही नजदीक रहिंदे ने इसी कार्य व्यवहार दे विच फस के रह गए ने। कारण की सीगा कि इच्छा जागृत हो गई, संबंध चाहिदा है या वस्तुआं चाहिदियां ने उन्हां नु चट रहा बच्चा बड़े प्यार दे नाल और आने वाली फरियादा नु उन्हां अथरुआं दी तरफ नजर नहीं मारदा जिन्हां दे प्रति गुरु साहब ने उपदेश किया सी कि बेटा तू परहेज करना है, यानी कि वह तो यह समझ रहे कि यह परहेज का हुक्म उसनु सुनाया गया है मेरे वास्ते नहीं है, उन्हें परहेज किया नहीं और चट्टी जा रहा है। किसन चट रहा है? नौ द्वारा नु चट रहा है। गुरु साहब पिछले सत्संग स्पष्ट कर चुके ने कि यह नौ द्वारा की तरफ जरा विचार करके देखो, थोड़ा जा ख्याल करो, अनंत काल तो इन्हों नौ द्वारा दे विचो गंध निकल रहा अनंत काल तो, और जब तक असी इन्हों जामिया दे विच पिंजरिया दे विच आवांगे इन्हों द्वारा दे विचो गंध निकलदा ही रहना, और जदो भी असी इस पिंजरे दे विच आंदे हां इन्हों द्वारा नू साफ करन लग जांदे हां। मनुखे जन्म दा उदाहरण है कि नौ द्वारा ने विचार करके देखो, नौ दे नौ द्वार हर वक्त गंध कढदे रहिंदे ने और असी दिने राती इस गंध नू पूजदे रहिंदे हां, पूंज पूंज के भी अनंत काल तो अज तक ए ना ए गंध खत्म होया और ना ही असी इस गंध नू चट्टण तो बाज आए हां, और जब तक असी इसका चट्टणा नहीं छड्डांगे तो उस परमात्मा की दसवें द्वार की प्राप्ति क्यों कर हो जाएगी और क्यों ऐसी जीवात्मा नू प्राप्ति होएगी जड़ी कि इस जगत दे विच इन्हां द्वारा दे विच यानी कि इस गंध नू साफ ही करन दे विच लग गई जिस तरीके नाल बच्चा गुड़ चट रहा। तो दोनों भाव स्पष्ट हो गए, जिस तरह बनिया सुहागन हो गई उस तरीके दे नाल बच्चा जड़ा सीगा इस जगत दे विच गुरु साहब उपदेश कर रहे ने इहदा मजमून वह दुहागन कहलांदा है, वह जीवात्मा जड़ी की मन की संगत दे नाल इन्हां द्वारा नू चटदी रहिंदी है वह इस जगत दे विच कुल नू नाश करन वाले लक्षणा नू धारण करके कुल केड़ा सी सचखंड सी, सचखंड दे विच जा करके इसने सदा लई अपने आप नू अमर पद का अधिकारी बना देना सी, पर इसने केड़ी इच्छा जाहिर की स्वाद लगान दी बच्चे वांगू और अपने आप नू सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिता कि मैं बनिए नू मूर्ख बनाया। सात संगत जी ओ तीसरी अख इतनी शार पैना कि मन दे करोड़ा ही तरंगा दे विचो कोई भी तरंग उस अख तो बच नहीं सकती, यानी कि ओ तीसरी अख साडी हर पल हर कड़ी हर सूक्ष्म तो सूक्ष्म किरिया के उपर नजर रख करके बैठी है, पर बच्चा यह समझ रहा है जीवात्मा यह समझ रही है कि मैं वस्तुआ और संबंधा नू लै करके उच्चा सोता कर लिया और असल विच गल की है कि उसका दोनों का ही भाव जड़ा है गलत सी, एक सुहागन बन गया और एक सदा लई दुहागन बन गया और जन्म और मरण दे गेड़ दे विच इन्हां नौ द्वारा नू साफ ही करदा होया आया और साफ ही करदा करदा चला गया, ना ए द्वारा जो गंध निकलना कदी बंद होया और ना ही वो जीवात्मा कदी इदे विचो निकल के अगली पौड़ी दसवें द्वार चढ़ के ते सदा लई सुहागन बन सकी। सो अज दा जो मजमून है गुरु साहब बिल्कुल स्पष्ट कर चुके ने कि दुहागन किस नू किया गया, ते असी सारिया ने विचार करना है कि इस परिभाषा दे विच असी किस मोड़ ते खड़े हां और उस मोड़ तो अगे दा रस्ता असी किस तरीके दे नाल तय करना है। दुहागन दा जड़ा भाव है इस जगत दे विच जिस स्त्री नू पति त्याग देंदा है यानी कि प्रतियक्ता नू ही दुहागन किया जांदा और प्रतियक्ता दे गुण की ने लक्षण की ने, यानी कि अगर पति तो त्यागी स्त्री चूड़े नू पाए सूए वेश नू धारण करे शिंगार करे चंदन दे लेप लगाए ते इस जगत दे विच उस नू किया जांदा है भी कि एक कुल नू नाश करन वाले गुण धारण करती है। और दूसरी तरफ इसी दा उदाहरण नू देंदे होए रूहानियत दा जड़ा मजमून है जदों जीवात्मा मनुखे जन्म दे विच आ करके उस पति नू यानी कंत नू परमेश्वर नू अकाल पुरुष नू उस दी आसक्ति नहीं करदी, उस दे नाल रमण नहीं करदी, उस दे विच लीन नहीं होंदी, उस दी आसक्ति पराए खसम यानी के मन दे विच है, मन दे नाल रमण करदी है, मन दियां रंगरेलियां मनांदी है। ये मन दियां रंगरेलियां की ने? काम क्रोध विषय विकारा दे विच ईर्षा निंदिया चोरी चुगली निंदिया इस दे विच ही अपनी हस्ती नूं मिटा रही है। ये शिंगार उन्हां जीवात्मा दा जड़े बेशक गुरु दे कोल रह करके भी ये सूआ वेश धारण करते ने ते गुरु साहब कहंदे ने ये कुल नूं नाश करन वालियां कुलक्षणियां जीवात्मा ने। ये दोनों ही उपदेश स्पष्ट ने कि अगर गुरु दे कोल आए परमार्थी बनन वास्ते ते इन्हां कुल नूं नाश करन वालियां जीवात्मा तो सदा ही सावधान रहना। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना वेश का सूआ इस करके धारण किया है, अपने पति तो त्यागियां हुई ने, और इन्हों का मकसद भी यही है कि प्राय पुरुष नू अट्रैक्ट करना ऐसिया परमार्थी जीवात्मा नू जड़िया परमात्मा अपने कंत पति नू प्राप्त करना चाहदियां ने उन्हां नू परमा के रख देना, उन्हां दे रस्ते दे विच रोड़े रुकावटा खड़िया कर देनिया। ये रुकावटा किस तरीके नाल खड़िया कर दियां ने? अगर असी गुरु दे कोल आंदे आ ते सानू इस मजमून दा अच्छे तरीके नाल पान हो जाएगा। बड़े बड़े सुंदर गुट बनाए जांदे ने, बड़ी बड़ी ईर्षा निंदिया और मान दे तैल ऐसिया ऐसे बचन ऐसे ऐसे सत्संग कीते जांदे ने कि तुसी सुन के ही हैरान हो जाओगे कि इस परमात्मा दे घर दे विच चारो पासे प्रकाश ही प्रकाश है। पर साध संगत जी सच्चाई नू हमेशा याद रखना, चिराग दे तले हमेशा ही अंधेरा हुंदा। अज तक ऐसा चिराग नहीं बनिया जड़ा अपने तले दे अंधेरे नू दूर कर सके। यानी कि जीवात्मा परम गई और दुहागण बन गई, आई ते सुहागण बनन वास्ते सी। इस करके साधक नू इस साधन नू बड़ी होशियारी दे नाल तय करना है, और जब तक होशियारी असी अपने अंदर हासिल नहीं करांगे ए सोझी कौन देगा? ए पूरन सतगुरु देणगे। पूरन सतगुरु किस नू देंदे ने? जड़ी हस्ती नू मिटांदी है अपने उस अकाल पुरख नू मिलन वास्ते स्वासा दी पूंजी अपने सतगुरु दे उपर, तां ही जा करके उसनू सोझी दी प्राप्ति होंदी है। नहीं ते ए कुल नू नाश्ट करन वालियां जड़ियां जीवात्मा ने ए तुहानू इस जगत दे विच हर जगह मिलणगियां, और सूआ वेश धारण कीता होया गुरु दे कोल जरूर मिलणगियां। और हमेशा ही याद रखना कि इन्हां तो बच करके चलना, बिना इन्हां तो बचे असी इस अग दे दरिया नू समुंदर नू पार कर ही नहीं सकते। यही कारण है कि अनंत काल तो असी गुरुआं दे कोल गए भी, नाम भी लिया, अमृत भी छके, कई किरिया अपना लिया, पर बुल्ले शाह नू गुरु दा दित्ता है उपदेश कि इधरों पुटना और इधर लाना इस किरिया नू ना कर सके। इन्हां सूए वेश नू धारण करने वालिया ने रस्ते दे विच ही बो लिया, रस्ते दे विच ही सानू लुट लिया। यानी कि असी अपने आप नू लुटन तो भी बचाना है और अपने घर दे रस्ते नू भी तय करना है। और असी ए जड़ियां दुहागण बनिया हुई वा, इस दुहागण दे उन्हां लक्षणां नू त्याग करके उन्हां गुणां नू धारण करना, जिन्हां नू धारण करन दे बाद ए जीवात्मा सदा लई जो है इस जगत दे विच यानी परमात्मा नू मिल करके सदा लई सुहागण बन जांदी है। सो अज दे उस शब्द दे विच गुरु साहब बड़े अच्छे तरीके नाल इस नू स्पष्ट कर रहे हैं।
फिर के पाणे ना चले हुक्म करे गवार,
फिर के पाणे ना चले हुक्म करे गवार। दो हिस्से ने इस तुका दे, बिल्कुल स्पष्ट गल है, कोई भिन्न भेद नहीं, कोई छुपया नहीं। फिर कौन है? वो अकाल पुरख है। उसका भाणा की है कि जड़ा जन्म तैनू दिता है ना, ये दात है, अमानत है। ये अमानत किस दी है? उस अकाल पुरख दी अमानत है, और उसी दे उपर मिटानी है। और असी कर की रहे? हुक्म करे गवार। हुक्म करन दे, हुक्म कौन कर रहा? यानी कि पराया पुरुष हुक्म करता है, और असी उस दे हुक्म दे अनुसार अपना ए चोला ए दात जड़ी है उस दे उपर कुर्बान कर देंदे हैं। ए दुहागण दा सब तो पहला लक्षण है कि जीवात्मा दुहागण कौन है इस जगत दे विच जड़ी उस पराये पुरुष दे विच आसक्त है, और जिसने उसनू ए दात दित्ती है, ए मनुखा जन्म दिता है। किस वास्ते दिता सीगा? परमात्मा नू मिलन वास्ते, अपने अंतर दी मैल नू धोण वास्ते। क्या देवी देवते अपने अंतर दी मैल नू धो सकते ने? अगर धो सकते होंदे तो उन्हां दा अद्धा रस्ता तां पहले ही तय हो गया सीगा। सृष्टि दे सिरमोर फिर ओही होंदे, मनुख ना हुंदा। मनुख नू क्यों किया गया? क्योंकि मनुख दे जन्म दे विच आ करके इह जीवात्मा इस पराये पुरुष तों छुटकारा पा सकदी है। देवी देवत्या दा खसम जड़ा ना ए मन रूपी काल, उस तो बच नहीं सकते। एका माई जुक्त व्याई तीन चेले परवान, ए तीन चेले जड़े ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं ना, ए उस मन यानी के मन दा जो खसम पिता कौन है? वो काल है। काल यानी कि वो दूसरा खिलाड़ी जिस दी मैं करता अहंकार है, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਖਿਲਾੜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਤੱਤਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਭਾਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾ ਦੇ ਉਸ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਸਤੂ ਔਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਗੁੜ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੈ ਇਸ ਦੁਹਾਗਣ ਦਾ
ਮਨ ਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਜਿਉ ਦੁਹਾਗਣ ਤਨ ਸੀਗਾ
ਮਨ ਮੁਖ ਕਰਮ ਦੁਹਾਗ ਕਮਾਵਣੇ ਜਿਉ ਦੁਹਾਗਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਖਸਮ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਖਿਲਾੜੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕਰਮ ਜਾਂ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਜਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੋਲਾ ਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੰਜਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੋ ਇਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਖਿਲਾੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਔਰ ਉਸਦਾ ਅੰਸ਼ ਉਸਦੀ ਤਾਕਤ ਔਰ ਸਮਰਥਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਿਲਾੜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਔਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਖਿਲਾੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਅੰਸ਼ ਜੋ ਮਨ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਹਾਗਣ ਦਾ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਉਸਦਾ ਉਸਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨ ਰੂਪੀ ਮੈਂ ਦੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਦੁਹਾਗਣ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੇਜੈ ਕੰਤ ਨਾ ਆਵਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਈ ਖੁਆਰ ਹੁਣ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਸੇਜੈ ਕੰਤ ਸੇਜ ਤੇ ਕੰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਖਸਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀਏ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਖਸਮ ਦੀ ਪਰ ਖਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਖਸਮ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੜਫਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਜਾ ਹੁਣ ਸੇਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਸੇਜ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਜਾ ਕੰਤ ਨਾ ਆਵੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੰਤ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕੰਤ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹ ਗੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੁਆਗਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਖਸਮ ਕਦੀ ਆਇਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬੈਠੋ ਦਸ ਘੰਟੇ ਬੈਠੋ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਈ ਖੁਆਰ ਇਹ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਮਨ ਮੁਖੀ ਕਰਮ ਮਨ ਨੂੰ ਖਸਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੁਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਮਨ ਫਸਿਆ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੰਦਰੀ ਜਿਸ ਘਾਟ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਵਾਦ ਲਾਹਣ ਗੁੜ ਚੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਸਿੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਬੰਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਘਸਿੜਦੀ ਹੋਈ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿੰਨੋ ਹੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇੱਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਤੇ ਉੱਧਰ ਲਾਉਣਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾੜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੇਜੈ ਕੰਤ ਨਾ ਆਵਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਈ ਖਵਾਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਣ ਛਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਏ ਖਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ
ਫਿਰ ਕਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵਈ ਨਾ ਤੀ से करबार।
पीर का महल ना पावे ना दिसे करबार। वैसे ते असी महला दे विच बड़े उच्चे उच्चे महल बना रहे हैं, बड़िया गहरिया नीहां खोद रहे हैं, और उसके बाद भी कहंदे ने कारोबार दिखाई नहीं देंदा। किहड़े घर की गल कर रहे ने? ये दसवें द्वार ते वो घर हैगा गुरु दा द्वार गुरुद्वारा। सुषमना के घर राग सुन सुन मंडल लिवलाई। जिस जगह ते वो परमात्मा दा गुण वो खसम प्रगट हुंदा है ना, वो सानू नजर नहीं आ रहा, नजर आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि जिन्हां दे इस जगत दे विच बड़े गहरे महल बने ने ना, उन्हां नू उस घर दे विच उस जगह दे विच सचखंड दे विच कोई इट लाण भी नहीं देगा। कारण की सी? कि इत्थे वड्डे महल बने ने, नीहां बड़िया गहरिया ने, और जिन्हां ने इस जगत दियां नीहां अपने हथी पट लिया ना, याद रखना ये महल कोई नहीं टाएगा, ये महल इस जीवात्मा नू खुद टाने पैणगे। और नीहां जितनियां गहरिया सी बनाईयां ना, एक एक इट इस नी चो कढ़नी पेगी। जदो इनियां खोखलियां खाली हो जाणगियां, महल ढह पेगा ना, उस वेले जा करके इस जीवात्मा नू इजाजत मिलेगी कि सचखंड दे विच हां हुण आ करके तू हिट लगा सकदा। यानी कि अगर इस जगत दे विचों असी उजड़ांगे नहीं ते सचखंड दे विच वस ही नहीं सकदे। और अगर असी ये सोच के बैठे हा कुछ लफजा नू लै के अमृत पी के असी जाके सचखंड वस जावांगे, ते किसे ने जिस दो द्वारा चो निकलन नहीं देना, दसवें वड़न गुण देगा। यही कारण है कि असी इस जगत दे विच अपने महल पक्के कर रहे हैं, और उस जगत दे विच सानू घर बार दी सोझी नहीं होंदी। क्यों? क्योंकि इत्थे नीहां साडियां बड़ियां गहरियां ने। क्यों? क्योंकि अज पुत्र नहीं है, पुत्र मंगदे हां ते पोता चाहिदा, पोता ते पड़पोता चाहिदा, उसी का इंतजाम कर रहे हैं सारियां नीहां ने। और यह नीहां पट्टे बगैर किसी ने हिट नहीं लाण देनी सचखंड।
त्रिग जीवन तो मुट्ठी दूजे पाई।
त्रिग जीवन दोहागणी मुठे दूजे पाई। कहंदे ने तिकार है ऐसे जन्म दे उपर, तिकार है उस जीवात्मा उपर जड़ी मनुखे जन्म दे विच आ करके पराए खसम दे नाल रंग रेलियां मना रही है, पराए पुरुष दी आसक्ति कर रही है, जड़ वस्तुआं और संबंधा नू अतरक्त कर रही है। दूजे पाई इस जगत दे विच द्वैतता दा भाव की है? एकता है, वो परमात्मा परमात्मा दे प्रति आसक्त वैराग होना। वैरागी किण है और वैरागमल जी किस नू किया गया? गुरु साहब स्पष्ट करदे ने, जदों जीवात्मा मनुष्य जन्म दे विच इस जगत दे विच जो कुछ भी दृष्टि गोचर है मन बुद्धि और इंद्रिया दे नाल उन्हां दी आसक्ति करदी है, उन्हां नू देखदी है, उन्हां नू सुनना चाहती है, उन्हां नू प्राप्त करना चाहती है, उन्हां नू कायम रखना चाहती है, सिर्फ ईर्षा मान दे तहल आकर के। सब तो वड्डा अवगुण है मान। मान नू असी बहुत अच्छे तरीके नाल अगर श्रवण करिए, ध्यान नाल इहदे गहरे उतरीए, तो सानू पता चलेगा ये मान ही है जिस कारण इस जगत दे विच असी सारा कार व्यवहार कर रहे हैं। अगर ये मान नक दी गल ना होवे तो इस जगत दे विच 80% कार व्यवहार ते वैसे ही समाप्त हो जाए। सिर्फ इस नक और मान दी खातर ही असी सब कुछ करदे हां। ते गुरु साहब स्पष्ट करदे ने कि इह धिकार देंदे ने उस जन्म दे उपर कि 84 लाख जामिया दे बाद तैनू जन्म जिहड़ा दित्ता सीगा उह किस वास्ते दित्ता सीगा और तू कर की रहा। यानी कि वस्तु और संबंधा दी जिहड़ी आसक्ति है उस जीवात्मा नू उस दुआगण नू धिकार दे रूप दे विच गुरु साहब उपदेश करदे।
कलर केरी कंद जो एनस किरटे पाई।
कलर केरी कंद जो एनस किरटे पाई। और जिस तरह कोई चूने दिया इटा दी कंद खड़ी कीती गई किन्नी भी पक्की होए कुछ समय बाद की होंदा वो पुरन लग जांदी है, उदे विचो शोरा निकलन लग जांदा, शोरा निकलदा निकलदा ये हालत हो जांदी है कि वो दीवार दिया इटा जड़ियां कमजोर होंदियां ने वो दीवार ढह पैंदी है। यही हालत है कि असी कितने ही पक्के हो जाइए, कितना ही सिमरन करते हैं, जदों असी मां दे पेट दे विच होंदे हां ना, एक टक एक लिव लगी होंदी है, दसवें द्वार बैठे होंदे हां गुरु दे कोल, थले उतरदे ही नहीं। क्यों? थले नरक है, गंद है, कष्ट है, जठर अग्नि दी जिहड़ी तपश है, 1600 जोड़ हड्डियां दे बणदे ने 2 महीने दा समय, वो ऐसा भयानक नरक है कि जीवात्मा थले नहीं जो उतरदी। बिलकुल दसवें द्वार एक टक नक रगड़दी है, माफिया मंगदी है कि मैनू इस नरक चो कढ, इस पुठे नरक चो कढ, इस गूमूत्र दियां थैलियां चो मैनू कढ, ताकि मैं तैनू प्राप्त कर सका तेरे गुण का। बड़े नक रगड़दी है। वो कहंदे ने कितनी पक्की नींह बनाई सी, पर कहंदे ने इस दे अंदर खोट है, केड़ी चूने दी खोट है, क्यों ज बाहर आंदे ही माया दे नाल लिपट गया, माया दे लिपट के ऐसा लिपटिया कि बचपन जवानी कदों चली गई ए तां पता ही नहीं लगा। गूढ़ी चटदा रहा, कार व्यवहार करता रहा, हुण बुढ़ापे दे भी जाके फरियाद करते ने साडे कोल चोकड़ी नहीं लगती, साडे कोल भजन नहीं आंदा, ते हुण कर भी की सकदे हो, हथ मलना सिख लो क्योंकि ओही बाकी रह गए ने। ए ना होए कि अज जिसले काल आ करके वाल तो खिचे तो उसले कहिए सानू हथ मलने नहीं आंदे, हथ मलन जोगे ते रह जाओ। इस करके गुरु साहब उपदेश कर रहे ने इस तुक दे विच बड़ा गहरा भाव है कि माया ही वह चूना है जिस दे विच लिपट करके ये सारिया इटा जड़िया तू गर्भ जून दे विच एक लिव ला के उस परमात्मा दे अगे वादे कीते सन, ये सारे पुर पुर के टह गई और अखीर कंध टह पई, यानी कि आखिरी समा आ गया। पकड़ के काल किहड़े पासों लै गया, सारे रोंदे पिटदे ही रह गए, छिण में पई पराई, छिण दे विच इक पल दे विच ए सारियां वस्तुआं सारा जगत सारे संबंध पराए हो गए। क्या पति पत्नी, क्या पिता पुत्र, क्या मां बेटा, कोई वस्तु लै लो, कोई संबंध लै लो, सिर्फ पलक चपकण दी देर है, उसकी खबर नहीं। ते इट्ठा किथे लगा रहे ने इस जगत दे विच नीआ गहरिया करन।
बिन सब दे सुख नातीए, फिर बिन दुख न जाए।
बिन शब्द है, बिना शब्द प्राप्त कीते सुख दी प्राप्ति नहीं, और बिना पिर कौन है खसम अकाल पुरख, अकाल पुरख नु प्राप्त कीते बिना दुख नहीं जांदा, यानी कि सुख और दुख दोनों एक ही ने। सुख आएगा तो दुख जाएगा तो सुख आएगा, दोनों कट्ठे नहीं रह सकते। तो पहला शब्द की जड़ी गल की गई है, शब्द का भाव है उस अंतर की आवाज और प्रकाश की तरफ परमात्मा दे मैं दे एक गुण जिसन गुरु साहब नाम कहंदे ने, शब्द कहंदे ने, हक दी आवाज कह करके उन्होंने पुकारिया। ये हक दी आवाज केड़ी है, ये परमात्मा का एक गुण है। इस हक दी आवाज दे विचों एक प्रकाश निकलता है, इस प्रकाश और इस आवाज ने ही इस जड़ चेतन लोक नु आधार दे रखा है। कहंदे ने बिना शब्द सुख ना थी वे, यानी कि सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। हुण सुख किस तरह, हुण सुख का इशारा कर रहे ने सतगुरु, असि दुखी क्यों आ, मन करके ही असि इच्छा जाहिर की और इच्छा नु पूरण करन वास्ते वस्तु या संबंध के पिछे दौड़ रहे हैं। यानी कि कदों असि सुखी होवांगे, जदों मन तो पिछा छुटेगा, और मन तो पिछा कदों छुटेगा, जदों ये इस शब्द नु हक दी आवाज नु सुनेगा, इस दे प्रकाश दे विच लीन होएगा, पौड़ी दर पौड़ी चढ़दा आया, जदों अपने पिता यानी कि ब्रह्म दे विच जाकर के लीन हो जाएगा, तां जाकर के ए जीवात्मा दा पिछा छुटेगा और ए सुखी होएगी। और दूसरे पासे कहंदे ने बिना पीर दे खसम दे अकाल पुरुष नु प्राप्त कीते तेरा दुख नहीं जा सकदा। हुण पहला जिहड़ा सुख सी ओह सीगा मन तो छुटना, और इत्थे जिहड़ा सुख दी प्राप्ति है अकाल पुरुष दी कंत दी प्राप्ति है उस दुहागण लई, किसले जिसने मन तो पिछा छुटा लिया, मन दे हुक्म चो निकल गई, गुरु दे हुक्म दे विच आ गई, और जदों पौड़ी दर पौड़ी चढ़दी हुई अकाल पुरख नू यानी के सचखंड दे विच प्रवेश कर दी है उस सतनाम दी गोद दे विच, जिसले उसनू बाकी दे चार सूरजां दी ताकत मिलदी है, उस वेले जा करके ओ इस दुख तो बचदी है। इत्थे दुख दा जिहड़ा भाव है ओ है जन्म और मरण दा। उस तो पहले बेशक पार ब्रह्म पहुंच जाओ, जन्म मरण तो नहीं बच सकदे, बेशक एक नहीं सौ सतगुरां दे कोल जाके नाम या अमृत छक लो, आवागमन तो मुक्त नहीं हो सकते जद तक असी इस शब्द नू नहीं मिल लेंदे, इस नाम नू नहीं प्राप्त कर लेंदे। ओ नाम और शब्द कोई लफज नहीं है, कोई पानी दा कुंड नहीं है, ए ते सिर्फ शुद्ध उस परमात्मा दा गुण है, अनंत काल तो चलिया आ रहा जद ओ सृष्टि रची है, और मिलदा सिर्फ मनुखे जन्म दे विच है, और किसी भी जन्म दे विच इस नू प्राप्त कीता नहीं जा सकता। बेशक ए जड़ और चेतन नू आधार देण वाला कारण रूप दे विच पहले तो ही विद्यमान है, और बाद विच भी इसी में रहना है, पर मिलेगा सिर्फ मनुखे जन्म दे विच, और मनुखे जन्म दे विच आ करके अगर जीवात्मा दुहागन ही बनी रही, कुल नू नाश करन वाले गुणा नू एकत्रित करती रही, तो विचार करो ए दुख तो कदों बचेगी। जिस नू इस तुक दे विच कहा है कि इस दुख तो तां ही बच सकदा है जदों तू पीर नू प्राप्त कर ले, अकाल पुरख नू प्राप्त कर ले। यानी कि सतगुरु का मजमून एक मीडिया है, साधन है, जरिया है, असी साधन तक ही रह जावांगे ते किवें काम चलेगा। कार मोटर जो कुछ भी है यह साधन है, मंजिल ते वो है जिथे इस कार दे जरिए असी पहुंच जाना है। अगर कार दे विच उलझ करके रह गए, कार दे विच ही रह गए, लफ्जां च ही रह गए, अमृत विच ही रह गए, ते असी उस सच्ची दात नू सच्चे शब्द नू प्राप्त करन दे काबिल बन सकते ही नहीं। यही कारण है कि असी उस कुंड दे कोल जा करके भी ए जीवात्मा अज तक भुखी और प्यासी है, अज तक इस दी भुख क्यों नहीं मिट्टी, क्योंकि इस दे मजबूर नू समझ ही नहीं सकी। आई सी सुहागण होने वास्ते ਪਰ ਇਹ ਦੁਹਾਗਣ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਮਨ ਦੇ ਪਿਰ ਬਿਨ ਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਦਰ ਕਰ ਟੋਈ ਨਾਲ ਹੈ ਦਰਗੇ ਝੂਠ ਖੁਆ।
ਮੁੰਡੇ ਪਿਰ ਬਿਨ ਕਿਆ ਸਿੰਗਾਰ, ਦਰਗੇ ਟੋਈ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਖਸਮ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੂੰ ਦੁਆਗਣ ਕਲਾਏਗੀ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਖੱਜਲ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਲ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪੀਰ ਨੂੰ, ਪਤੀ ਨੂੰ, ਖਸਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਪੀਰ ਖਸਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਅਧੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ 2-4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਖਸਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਖਸਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੜ ਚੇਤਨ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਔਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸੇਵਾ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਚਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਔਰ ਉੱਤਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੁਛ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਰਤ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੋ ਦੁਆਰਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ ਕਦੋਂ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਲਝ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਿਚਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਚਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਫਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੈ ਕੈਦੀ ਆ, ਕੈਦੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪੱਕੇ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਕਰਕੇ ਬਾਹ ਨਾ ਫੜੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਾਹ ਫੜੀ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨਾ ਬਿਠਾ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੈਦ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੈਸੀਆਂ ਇੱਛਾ ਔਰ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਗੁੜ ਨੂੰ ਚੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਉਧਾਰ ਬੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਧਾਰ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਬਨੀਆ ਛੱਡੇਗਾ? ਕਾਲ ਬਨੀਏ ਦਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀ ਜੇ ਛੱਡਣਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਉਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਖਾਲੀ ਨੀ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੰਗਾ ਲਾ ਕੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਉਤਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਹੀ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਐਸੀਆਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾ ਕਰਕੇ ਉਧਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਨੂੰ, ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੈਸੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਫੁੱਲ ਵਕਣ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾਂ ਠੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਿ ਉਸ ਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਧਾਰ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਇਆ ਆ ਗਈ, ਦਿਆਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਦੇ, ਇਸਨੇ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ, ਔਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਖੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਗਾਂ ਦੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ। ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀਆਂ ਕੈਸੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਜੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਲੋਕ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਉਸ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲਕ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਸਕਤੀ ਦੇਖੋ, ਕਿਸ ਦੀ ਆਸਕਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਐਸੀ ਆਸਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੀਆਂ। ਕੈਸੀ ਭੈੜੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ! ਕਲਪਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਦੀ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਤੂੰ ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ,
ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਰੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰ। इस तुक दे विच कोई भेद नहीं रखिया। गुरु साहब हुण उस तरफ लैके जा रहे ने कि अगर असी दुआगण बनी गई वा तो सुहागण किस तरीके नाल बन सकते हैं। कहिंदे ने गुर के भाणे जो चले, पहली तुक विच भी उन्होंने स्पष्ट किया सी भाणा की है। गुरु साहब स्पष्ट कर चुके ने कि जो भी कर्म लै करके असी जन्म लिया, कर्म की ने पिछले जन्म जेड़े गुड़ चट्टे ने ना उन्हों का भुगतान मात्र है, इस तो अगे कुछ भी नहीं है। पर एक हिस्सा जरा 25% का तेन चौथाई मिलिया सी ना सुहागन बनन वास्ते, अगर तू उस नू भाणे दे विच आ जाए, गुरु दे हुक्म दे विच आ जाए, को गुरु दे हुक्म विच किस तरह आना, मन बेचा सतगुर के पास तिस सेवक के कारज रास। मन नू असी वेचिया नहीं, मन नू कुर्बान किया नहीं, ते असी सेवक किदे बने हुए हैं, गुरु दे संगत दे। कितना वड्डा अहंकार है, असी ते मन दे सेवक आ, मन दे उपर कुर्बान हो रहा, मन ही खसम है, मन ही पिता है, मन ही गुरु है। ते गुरु साहब उपदेश करदे ने अगर तू भाणे दे विच आ जाए, अपने मन नू मार दे, मन नू कुर्बान कर दे, अपने गुरु दे उपर भेटा कर दे, ते फिर तू सेवक बन जाएगा और फिर तेरी कीती गई क्रिया निष्कामता दी होएगी। सेवा करत होए निष्कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। ताई तेरी क्रिया जड़ी है निष्कामता दी बढ़ेगी और ताई जा करके तू उस परम पुरुष पिता नू यानी कि अकाल पुरुष नू प्राप्त करने दे काबिल बन सकेगा।
लिखिया मेट ना सकिए जो तुर लिखिया,
लिखिया मेट ना सकिए जो तुर लिखिया करतार। करतार ने जो कुछ लिख के लेखा दे करके इस जगत विच भेजिया, गुरु साहब कहंदे ने ओह मिट नहीं सकदा। हुण इहदे विच वी बड़ा अधूरा अर्थ असीं कढ़दे आ, भई तुसीं तां भजन बंदगी करदे हो जां सेवा करदे हो क्योंकि तुहाडे कर्मां